देखिए ना, शादियों में लोग पहले भी आते थे, बरातें तो गांव वालों की भी बड़ी, पूरा गांव बराती होता था। तो क्या मीठे चावल, तो तड़के वाले चावल, कोई गोश्त भी नहीं होता था उसमें, तड़के वाले ब्राउन चावल और साथ जरदा डाल के, तो और वो प्लेटें थोड़ी होती थी, एक नाली में डाल के सबको बिठाते थे, सब सांझे थे। मैं आपको यकीन से कह सकती हूँ, आपकी असल खुशी पता क्या है, आप उनके साथ हो जिनके साथ ऑलमोस्ट एवरी डे होते हैं। हर एक का एक अपना है ना सर्कल जिसमें वो रहता है, कोई काम करता है, कोई कारोबार करता है, कोई दीन का काम करता है। जैसे हम अपनी मिसाल लेते हैं, तो आप में से बहुत सारे लोग अपने अपने स्कूल और जगहों पर रोज़ ही मिलते हैं। पता चला कि किसी एक के घर में शादी आ गई और आपको बुलाया ही नहीं, वो क्यों नहीं बुलाया भला? पहली बात, एक को बुलाया तो 100 को बुलाना पड़ेगा। और एक बंदे का मुझे इस ट्रिप में भी पता चला पर हेड कितना चार्ज करते हैं लोग। मैं लेविश और बहुत बड़ी बड़ी शादियों की नहीं, एक एवरेज वलीमा या शादी जो लोग अरेंज करते हैं ना, जिसमें अंडर दी टेबल कुछ डिशें बनवा लेते हैं, हालांकि गवर्नमेंट ने तो A1 डिश अभी तक भी रखी हुई है, हॉल कुर्सियां मेज़ मिला के, यानी नॉर्मल बंदे का खर्चा जो होटल या बाहर लॉन्स में या मार्कियों में आप करते हैं, वो 5,000 से शुरू होता है। मैंने कहा 5,000 रुपये, 4,500, किसी ने मुझे कहा 4,500 पर हेड पड़ेगा। मैंने कहा है इतना खाना लोग खा लेते हैं? कहते नहीं, सारा खाना नहीं उसमें आता, उसमें कुर्सी के भी हैं, हॉल के भी होंगे, अगर आप टेबल लगवा लें और पीछे स्टेज स्टूज बना लें तो फिर और भी होंगे। और मेरे हस्बैंड जो कि यहाँ से नहीं है, बॉर्न एंड रेस्ट वो बाहर की दुनिया से, वो कहते हैं आप लोग मस्जिदों में क्यों नहीं शादी करते, इतनी बड़ी बड़ी मस्जिदें, आप क्यों शादी हॉलों में करते हैं? तो हमारा तो शादी कल्चर है। आप आज इसी रोड पे जिस पे हम हैं बाहर निकल के ज़रा गुजरांवाला की तरह मुँह तो करें, GT रोड, क्या बड़े बड़े आपको ईवान दिखते हैं उधर, शादी घर मिलने बंद होके लोग शादी घर बना रहे हैं, क्यों बोला कि पैसा तो इधर है। बिलीव मी, मुझे तो खौफ आ रहा है कि एक वक्त ऐसा आ जाना है कि हमारी मस्जिदें मदरसे ये सारे बंद करके लोगों ने शादी हॉल बना देने। सबसे ज़्यादा एक्सपोजर शादी है, और अब शादी का जिक्र बार बार इसलिए आ रहा है कि रिश्तों के टूटने की बात है। अब आप 100 बंदियों को बुलाएं और 5,000 पर हेड दें, तो आप कितने लाखों में तो सिर्फ आपको बुलाना है उन्होंने, और मैं कोई PC की शादी की बात नहीं कर रही, वो उसका रेट बहुत ऊंचा है, और जो फिर ज़ाया होता है खाना। मैंने कहा ये 5,000 में से कोई बड़ा ही भी बहुत पेटू भी होगा ना, कोई हमारा गुजरा वाले वाला पहलवान, तो वो 1 से 2 हज़ार का ही खाएगा, महंगाई का दौर है चलो मान लेते हैं। तो आम ये जैसी औरतें लड़कियां होती हैं वो क्या खाती हैं, नुक्ते लगा के प्लेट में बैठती हैं, उनको बुलाना ही नहीं चाहिए ऐसी जगहों पर, किसी ने कहा हम खाएंगे कुछ नहीं हमें बुला तो ले। तो मैंने कहा आपके बुलाने के तो उनको पैसे देने जाने, उन्होंने तो कुर्सियाँ गिननी है और प्लेटें गिननी है। मदहपरस्ती आ गई है, हम अपने रिलेशंस बनाते हैं दूसरों में। अब जब मैं आपसे रोज़ मिलूं बिलफर्ज, आप में से किसी का भी नाम फातिमा सुरैया आमना कुछ भी रख ले, मेरा आपसे सुबह शाम का, चले बाजी फरद का ले लेती हूँ, मेरा इनका सुबह शाम का ताल्लुक है, और अपनी बच्चे की शादी में ये मुझे ना बुलाएं, मैं तो अगले दिन आपसे बात भी नहीं करूँगी। भाई आपने मुझे सिर्फ दर्स देने के लिए रखा हुआ? नहीं उस्ताजा, वो ये मुझे ये तो नहीं कहेंगी कि 5,000 खर्चा है, वो कहेंगी असल में बहाना एक। अब जब मैं आपको अगला मसला टूटते रिश्तों का देने लगी हूँ, माहौल ठीक नहीं है शादियों का। मेरे पास टूटे हुए दिल आते हैं, जिनके दिलों में अल्लाह की ने मोहब्बत डाली है हम सबके एक दूसरे के लिए, लेकिन वो अपनी इन खुशियों में हमें बुला नहीं सकते, नहीं वो आपके काबिल माहौल नहीं है। मैंने अभी इधर पाकिस्तान आना था, मेरी डेट्स थोड़ी सी इधर उधर हो रही थी, तो किस्सा मुख्तसर, एक सिस्टर जो कि ज़ाहिर है कि वो उनका एक अपना लेवल है, अभी वो इस तरह नहीं थी लेकिन कुरान से ही ताल्लुक़ था उनका भी ना, उनको पता चला कि मैं फलां डेट पे आ रही हूँ, उनके मुझे मैसेजेस, खुशी, ओ मैं ब्लेस्ड हूँ, मेरे बच्चे की शादी, आपने मेरे शादी में आना है। अच्छा मुझे पता था अंदर से, लेकिन मैं भोली बन के देखती रहती हूँ आगे आगे, देखिए होता है क्या। उन्होंने मुझे कार्ड भेजा, ये वाला कार्ड, मैं आपने सर जी ने आना है, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि आप उन दिनों पाकिस्तान होंगे और फिर इस शहर में आएंगी। मैंने कहा ठीक है। फिर उसके बाद ज़रा मैंने उनको उस वक्त तो बहुत दुआएं वेलकमिंग किया, जब मेरे वक्त करीब आया आने का, एक आधा दिन रह गया, फिर मैंने उन्हें कहा कि फ़ोन पे बात करनी है ना मुझे, क्योंकि वो बहुत पॉश अल्ट्रा पॉश शहर के माशाल्लाह बड़े बाइज़्ज़त लोग, खाते पीते भी, और हर लिहाज से इसने कुरान पढ़ लिया और काफ़ी हद तक अपने लोगों के हिसाब से तो बहुत वो बामल है। तो मैंने ऐसी बातों ही बातों में फिर पूछा कि अच्छा वो आप ला रही हैं किस किस दिन, आप हमें एक्सपेक्ट करती हैं, कार्ड तो आपने कई दिन के भेज दिए, अच्छा उस दिन क्या होगा, उस दिन क्या ऐसे वैसे। फिर उसने बताया मुझे, तो फिर बाद में मैंने कहा अच्छा माहौल कैसा होगा, हमारे काबिल है माहौल, क्या मतलब? मैंने कहा म्यूज़िक तो नहीं होगा, क्योंकि म्यूज़िक एक ऐसी चीज़ है जिससे मेरी पल्शन है, मिसाल है जो साज़ सर तो एक सेकंड नहीं बैठेंगे। दूसरी बात फिर मैंने पूछी कि मैं कैसे कपड़े पहन के आऊँ, ज़ाहिर है कि अगर मुझे इतनी खुशी से आप बुला रहे हैं और मुझे भी बहुत प्यार है उनके बच्चों से, ये भी बता दूँ, अपने लगते हैं दीन वालों के बच्चे भी, तो मैंने कहा कि मैं तो अच्छे कपड़े पहनूंगी, मैं क्यों ऐसे हूँ, तो मुझे बताएं कि माहौल कैसा होगा और मैं अबाये में बैठना है मैंने कि क्या करना है। अब मेरे इन सवालों से पहली दफ़ा उसके पाँव ज़मीन में लगे, ये कोई 8 दिन पहले बात है शादी से। कहती अच्छा ये तो सर, ये तो है, मुझे पहले ही शक था, डर था। अच्छा मैं आपको ना घर वालों से बात करके फिर बताती हूँ। फिर उसके बाद वो शुरू हो गया जिस पे सिर्फ नौखा ही किया जा सकता, बेटे की खुशी वो नहीं मानता, मियाँ कहता है तुम्हें क्या हो गया, ये है वो है। वो 5 दिन का फंक्शन होते होते 2 दिन पे रह गया करते कराते। और आपको तो कैंट पे हम उस शहर में मौजूद हैं और उसके मेरे साथ मैसेजेस चल रहे हैं, लेकिन बड़े ड्रॉप सीन है। इतना लोगों के लिए इस वक्त अल्लाह के नाम पे जुड़े हुए रिश्तों को निभाना मुश्किल हो गया। अपनी खुशियों में लोग छुपाने लग जाएंगे आपसे कि नहीं आपको क्या बताएं, भाई आप छोड़ दीजिए, मुझे उन्होंने कहा आपके लिए अलग करते हैं, ये है वो है। तो मुझे तो फिक्र उनकी थी, उनकी इतनी प्यारी बहू की थी, शहजादियों वाला हुस्न और खूबसूरती उस बच्ची में। तो मेरा तो दिल कटे ना कि इसको देखेंगे सारे बैरे भी और फुलां भी, तो फुलां भी, और इसको देखेंगे लोग जो पहले ही लोगों में कहले लोग उसको आइडियलाइज करते हैं, तो जब वो अपने पहले बेटे की शादी करेगी और पहने उड़ेगी, मेरा तो दिल कटा ना, प्यार से बुरा नहीं, लेकिन उसके दिल में तड़प, रोना धोना, खुशी, मानते नहीं हैं बच्चे। और इस वीकेंड पे भी हम लोग इसी एक ऐसे जिहाद से गुजरने वाले हैं, सपोर्ट करते हैं हम ऐसे लोगों को, चले मैं आपके साथ हूँ। अभी किसी ने कहा कि आप हमारे पास आए अपने बच्चों को लेके, मियाँ को, कि मैं तो समझा के थक गई हूँ सर जी से इनकी बात कराएं। तो मैंने इनसे कहा कि कोई डायरेक्ट बात ना करिएगा, ज़रा वैसे बच्चों से अल्लाह की मोहब्बत की बात करें। तो वो मुझे बाद में आके कहते तुम मुझे क्या कह रही थी, उनके तो बेटे ने आते ही सबसे पहला सवाल ये किया कि म्यूज़िक हराम है। फिर उसने उस बात पर उनको मना लिया कि अच्छा ये आएंगे तो म्यूज़िक नहीं होगा, ये इनके लिए अलग जगह बनाते हैं। मैंने कहा ठीक है, अगर हमारे आने से पूरी थरथली मचा हुआ माहौल खामोश हो जाए ना, तो हम इसके लिए तैयार हैं, पता लगे सबको क्या हुआ है, वो जो साजा आई हैं या सारा आए, कर दो, हम तैयार हैं। इस वक्त इस सपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत है। अगर हमारे बैठने से उतनी देर म्यूज़िक बंद रहना है, तो हमने शुरू में आके अंड बजाना, तो दुआ करिएगा हम कामयाब हो जाएं और वो भी कामयाब। रोती हैं औरतें, हमें तो पढ़ा दिए कुरान, बच्चों को तो पढ़ाएं, मियाँ नहीं मान, मैं कहते ये हो कैसे सकता है, यानी इस वक्त लव्स म्यूज़िक और शादी ऐसे जैसे लड़का लड़की, मौलवी साहब और नका के बोल, और सब जितने मैं आपको माजरत से कहूँगी इज़्ज़तदार लोग बैठे हैं मेरे सामने, शहर के माशाल्लाह अच्छे लोग हैं आप सारे, ये अच्छा इलाका है। कभी आपके घर अब अगला शादी कार्ड आएगा तो उस दिन पूछिएगा कि रिश्ता टूटता है कि जुड़ता है, क्यों जरूरत नहीं करते हम, कमी क्या है, मैं तो अपना हक लूँगी, मोहब्बत का हक मैं तो लूँगी, मेरे भांजे की शादी होगी भतीजे, क्योंकि मैं तो डंके की चोट पर हक लूँगी, कि मैं तुम्हारी खाला हूँ को मजाक थोड़ी है, मैं तुम्हारी फूफो हूँ, मुझे मेरा हक चाहिए, मैं क्यों गूंगी शैतान बन के तुम्हारे वजह से वहाँ जाके छुप के बैठ जाऊँ, शर्मिंदगी में सबसे आगे खड़े होके बैठूंगी, देखो फिर क्या होता है। इस वक्त इसकी ज़रूरत है। देखिए कुछ चीज़ें माशरे में तब्दीली जो होती है ना, वो बातों से आ जाती है, तबलीग तबलीग बल्ले गोनी वलो आया, कुरान पढ़ो कुरान पढ़ाओ, मेरा दिन रात यही काम है। मेरा यकीन है कि मेरे इस कुरान पढ़ाने से भी 100% तब्दीली नहीं आएगी जब तक फिज़िकली जाकर ऑन स्पॉट लोगों को इस चीज़ का एहसास ना मिले। मैं एक छोटी सी मिसाल दे देती हूँ। एक तो आप ड्राइविंग किताबें पढ़ लें, आपको यहाँ बड़ी बड़ी प्रेजेंटेशन दिखा दी जाए, ये गियर है, ये हैंड ब्रेक है, ये गाड़ी है, ऐसे चलाते हैं इसको, आती है जब तक जाके ड्राइविंग सीट पे ना बैठे, नहीं आती ना। आप रेसिपी की 10 तरकीबें लिख लें पढ़ लें, जब तक चमचा हाथ में ना पकड़े नहीं आता ना। आज हमारे माशरे में जो बिगाड़ आ चुका है ना खुशियों के नाम पर और रिश्तों के नाम पर, इतना शदीद हो गया, जैसे ये दीवार है, अब वो दीवार पे घड़ी लगी है, अब इस घड़ी के पीछे यकीनन कोई कील है, प्यार से मोहब्बत से नरम हाथों से उस कील को जितनी देर मर्जी आप इस दीवार के साथ पकड़ के रखें, नहीं कील दीवार में जाएगा जब तक पीछे से एक ठोका नहीं लगेगा, ड्रिल करना पड़ता है। ये घड़ी क्यों खड़ी है, क्योंकि किसी ने ये कुर्बानी दी कि इस कील को इस दीवार में डालने के लिए मुश्किल से गुजारा, इस दीवार ने ये दर्द सहा और फिर उसके बाद कील ठुक गया। हमारे माशरे में रस्में और कल्चर इस दीवार से भी ज़्यादा सख्त हो चुका है। इसमें बैठ के मैं बातें करती रहूँ, ये ना करो, ये अच्छा नहीं, ये नहीं करो, वो नहीं अच्छा नहीं। असल में हमारा एक कोर्स हुआ था ये पिछले साल के दौरान, यानी लास्ट टाइम मैं आई हूँ ना उससे और इसके बीच में, मरातिबुल ईमान पेरिस से करवाया था, 3 दिन का कोर्स था, उसमें ये मिसालें दी हुई हैं कि सबसे पहले तो इल्म है, जैसे हम सब इल्म और तालुम का काम करते हैं, तबलीग कह लीजिए, इसके और इम्प्लीमेंटेशन नाफिज करने के बीच में एक दौर आता है जिसको रेजिस्टेंस का दौर कहते हैं, और कुरान क्या कहता है, वला तखाफुन लौमत लाइम। आप अगर सूरत मैदा खोल लें ना, तो अल्लाह ने उसमें चार काम बता दिए हैं कि या अय्युहल्लज़ीना आमनु मन यरतद्द मिनकुम अन दीनिही, तुम में से जो दीन को छोड़ता है, मुर्तद होता है, शौक से हो, अल्लाह को तुम्हारी परवाह नहीं, फसौफ यातिल्लाहु बिकौमिन, उस लिस्ट में जो आखिरी लफ्ज़ है ना, वो कह वला तखाफुन लौमत लाइम, मलामत वालों की मलामत से नहीं डरते। हमने तो एक लफ्ज़ सुना है मुखालफत का, जहाँ मलामत है, फ़र्क है। देखिए, मुखालफत दुश्मन करते हैं आपकी, वो कई दफ़ा आपके पास इसलिए भी आके बैठे होते हैं कि आपके पॉइंट नोट करके आपकी बात में मुखालफत करें, ऐसे भी लोग होते हैं। कोई बात नहीं, तैयार है लोग, आपको लगता है ये सारा दीन का काम जो आज मुसलमान कर रहे हैं सिर्फ मुस्लिम सुनते हैं, गैर मुस्लिम ज़्यादा गौर से सुन रहे होते हैं, क्योंकि उन्होंने अंदर से चीज़ें निकाल के इस्लाम को बदनाम करना होता है, ये हर छोटे बड़े लेवल पर होता है। लेकिन मलामत अपनों से होती है, ये जो रिश्ते टूट रहे होते हैं ना, टूटते रिश्तों को जो जोड़ना है ना, ये सारी चीज़ें क्या बता रही होती हैं कि हम अपनों की मलामत से डरते हैं। और एक जुमला लिखिए, इस पर एक लेक्चर भी करना है, लोग क्या कहेंगे, आज आप अपने दिल में इसको रख लें, इस जुमले को लिख के कागज़ पे फाड़ के बिन में फेंक दें, उसकी जगह क्या कहें, अल्लाह क्या कहेगा, वल्लज़ीना यनकुदूना अहदल्लाही मिन बादी मीसाकी। भाई वो भी तो रिश्ता तुमने निभाना है, उसको तोड़ के जोड़ना है, जाओ सारी दुनिया से जोड़ो, कुछ नहीं बनना। अल्लाह से रिश्ता तोड़ोगे तो फिर सारी दुनिया से जोड़ो, दुनिया तुम्हारी नहीं बनेगी। देखिए, जिस तरह से हम ये सोचते हैं ना कि लोग क्या कहेंगे, लोगों की बातें ये वो, आप इसको ज़रा सा रिवर्सली करके देखिए, अल्लाह क्या कहेगा, अल्लाह की निगाहों में मेरी नाक कट जाएगी, अल्लाह ताला नाराज़ होगा, अल्लाह रूठ जाएगा। लोग डंके की चोट पे कहते हैं रूठता है तो रूठे, हमें तो ये सामने चलते फिरते खुदा दिख रहे हैं। मिसाल से बात शुरू की थी ना, मैं अब वाइंड अप करना चाह रही हूँ, और मेरा दिल कर रहा है कि आप कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछें मुझसे। अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम का इतना जिक्र क्यों किया है, पहले पारे में भी है, इब्राहिम का पहला तारुफ जो कुरान कहता है कि जब इब्राहीम को उसके रब ने आजमाया, तारुफ देखे इब्राहिम का, आजमाइशों से बात शुरू हुई। और आप जाइए 30वें पारे में, सूरह आला फी सुखुफ इब्राहीम व मूसा, बीच में सूरह नजम को ले लीजिए, व इब्राहीम अल्लज़ी वफ़ा, 27वां पारा, हर पारे में कहीं ना कहीं इब्राहिम का नाम है। क्यों? तस्बीह नमाज पढ़ते थे, 500 दाने की तस्बीह थी, 1.25 लाख का ख़त्म करके बैठते थे। आयत करीमा दोस्तों को या सहेलियों को, या उनके हिसाब से आप कहें कि अपने दोस्तों को और अपने इर्द गिर्द वालों को जमा करके ये करते थे। मैंने तो कुरान को छान मारा, मुझे इब्राहिम की ज़ाती इबादत कहीं दिखी नहीं। हैं थी, ऑफकोर्स होती हैं, तो फिर ही तो काम होता है, जो अल्लाह ने उनको दी थी वो करते थे, और ये एनर्जी भी उधर से आती है, या अल मुज़म्मिल क़ुम अल-लैला इल्ला क़लीला, नबी को हुक्म दिया था कि रातों को क़याम किया करो, और साथ ही फिर अगली सूरत नाजिल कर दी, या अल मुद्दसिर क़ुम फ़ानज़िर, क्योंकि पहले क़ियामुल्लैल होता है, अल्लाह के सामने बंदा खड़ा होता है, रोता है, दुआइयाँ देता है, ऐ मालिक तू बता मैं क्या करूँ, कल मैं किधर जाऊँ, मेरे रिश्तेदार कैसे मुझसे खुश हों, मेरे बच्चे, मेरा शौहर, मेरी बीवी कैसे खुश करूँ, फिर कहीं जाके क़ुम फ़ानज़िर होता है बाद में, क्योंकि इन्ना लका फिन नहारी सबहन तवीला। ये जो ईमान वाली ज़िंदगी होती है ना, इसमें बहुत सारे मराहिल से बंदा गुजरता है, फिर आगे जाता है। तो जब आप इन चीज़ों के ऊपर गौर ही नहीं करेंगे, तो याद रखिए, सिर्फ पढ़ने पढ़ाने से हमारे माशरे नहीं बदलेंगे। बदलना होता ना पाकिस्तान ने, तो अब तक बदल चुका होता। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह, ये 22 है ना इस वक्त, मैं आपको 20 साल यानी 20s में ले आती हूँ, 2000 आज से 22 साल पीछे, यानी एक तो अल्लाह ताला डॉक्टर इसरार साहब को गरीके रहमत करे, उन्होंने कुरान फहमी का एक ऐसा पाकिस्तान में बीज बोया था जिसकी आज आपको मुख्तलिफ शक्लों में मुख्तलिफ उस्ताद और इदारे दिख रहे हैं। ये सब उधर से उस सोच से निकले थे, उससे भी पीछे लोगों के नाम है जिनको आप शायद इतना ना जानते हो, इनका नाम मैंने इनके सदक़े जारिया के लिए लिया। एक मुसलमान का, एक दीन वाले का हक है कि वो दूसरे दीन वाले का तذکرہ करे। वो आज कब्र में है, उनकी ज़िंदगी में उनकी इतनी पज़ीराई नहीं हुई जितनी अब हो रही है, क्योंकि जो अल्लाह का नाम बड़ा करता है ना, अल्लाह उसका नाम बड़ा करता है। और हक वाले की एक पहचान है कि उसकी ज़िंदगी में लोग इतना फ़ायदा उठाए ना उठाए, उसके बाद ज़्यादा उठाते हैं। कुरान की ये सदी है, 2000 की जो सेंचुरी है ना, 20th सेंचुरी, ये कुरान की है। आपको जगह जगह इदारे दिखेंगे, इंस्टीट्यूट, उस्ताद, मस्जिदें, मदारिस, और अब तो अल्हम्दुलिल्लाह ये पिछले 5 साल पीछे चले जाइए तो यूथ, यंग्स पे काम हो रहा है, ये हवाएं चल रही हैं अल्लाह की रहमत से। कम से कम अभी जो हमने एक कोर्स क्लास में हिसाब लगा के रखा हुआ है, अभी हमारी 5-6 नस्लें तड़पेंगी। बता देती हूँ आपको, हमारी एक हुज्जतुल्लाह बालिगा क्लास जुमे को होती है, तो उसमें हमने पैगम्बर इनकलाब नाम की एक बड़ी खूबसूरत सीरत की बुक की है पूरी। अभी उसका एनालिसिस क्या था कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक 2,500 साल लगे थे, तैयारियां की थी अल्लाह ने, फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए एक इनकलाब बरपा किया था, और फिर 1,000 साल तक उसका जोश दुनिया ने देखा। अब दोबारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर कितने साल हो गए, 1440 चल रहे, 1450, अभी इसमें तकरीबन 900 साल कह लें। कहते हैं कि ये अल्लाह का जो क्रिएशन प्लान है ये दिखाता है कि अल्लाह को पता है टाइम, ये तो एक सिर्फ एनालिसिस ही है ना, समझाने के लिए मकसद है, इसमें कोई मीन मेख निकालने की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन 2,500 साल बाद दोबारा इस्लाम आ जाएगा। अब हवाएं चल रही हैं, पूरी दुनिया में इस्लाम की तलब है, सोई भी उम्मत उठ रही है भाई, और सोते रहो तो कोई नहीं भूख लगती, जब सो के उठते हैं तो फिर बच्चे को भी भूख लगी होती है, बड़े को भी लगी होती है, अब उम्मत उठ रही है, लेकिन इसको उठने में भी 1,000 साल और लगने हैं। वो कहते हैं कभी गुलशन में बहार आई तो हमें भी याद रखना कि हमारा भी खूने जिगर जला है इस गुलशन को आबाद करने में। मैं अपनी सारी बातों और अपने साथियों की कोशिशों को यही नाम देती हूँ कि हमारा कोई दावा नहीं है कि हमारे नूरुल कुरान के इस काम से, इस प्लेटफॉर्म से कोई चेंज आएगा या आ रहा है, दिखता तो है, लेकिन बिगाड़ के मुकाबले में वो आटे में नमक के बराबर है। लेकिन जब कभी इस्लाम की बहार आएगी, हदीसें बता रही हैं आपको, हज़रत ईसा का दौर करीब है, इमाम महदी का दौर करीब है, इस्लाम के गलबे का वक्त करीब है, तो हमारा नाम होगा इधर दुनिया में ना वहाँ होगा आसमानों पे। आज के दौर की यही नेकी है, क्योंकि अगर मैं आयत आपके सामने रखूँ ना, वह यक्तऊ नमा अमर अल्लाह बिही का अगला लफ्ज़ क्या है, आयूस अल्लाह के बाद वह युफ सिदू न फिल अर्थ, वल्लाही इस वक्त फसाद है ज़मीन में। पिछले साल की सीरीज़ याद आ गई, 21-22 का पाकिस्तान का हमारा ट्रिप, तो उसकी थीम आयत क्या थी, जहर अल फसाद फिल बर्री वल बहरी बिमा कसबत ऐदी नास, लोगों के अमाल की वजह से फसाद फैल गया। फसाद ही तो है, रिश्ते टूटे हुए हैं इंसानियत के रब से, बेहयाई का जो इस वक्त तूफान है, इस पे तो जब बात होगी तो होगी, आप देखेंगे इस वक्त इस फसाद में, बिगाड़ में आपका मेरा काम क्या है कि अल्लाह के इस नाम को बुलंद करने में हर मुमकिन कोशिश करो, इंसानियत का रिश्ता रब से भी जुड़े और इंसानों का भी जुड़े, वरना उलाइक लहुम लाना, आज अल्लाह की रहमतों से दूर हैं। आए दिन की महंगाई, कभी आसमानी आफतें, कभी ज़मीनी आफात, कभी आप तूफ़ान ने नूह जैसी मिसालों को अपने सामने रखते हैं, और कभी जलजले हैं, और कभी आपके ये सियासी परेशानियाँ। कभी आपने बैठ के सोचा है हमारे साथ क्यों होता है? कुरान में अल्लाह ताला कहते हैं, क्या तुम नहीं देखते कि साल में एक या दो बार तुम आजमाए जाते हो, कि बड़ी बड़ी क्लैमिटीज़ नहीं आ जाती हम पे एक साल में एक एक दो दो? क्या हुक्मरान अल्लाह से बड़े हैं? नऊज़ु बिल्लाह। क्या अल्लाह ये सारी फसाद और जंगो जिदाल को ख़त्म नहीं कर सकता? कर सकता है, लेकिन जब तकलीफ़ों का वक्त आता है ना, तो उस वक्त हमारी उम्मत इकट्ठी हो जाती है। ये शर में खैर है, फिरौन के चुंगल में जब तक बनी इसराइल थी बड़ी सीधी थी, ताल्लुक़ बड़ा था अल्लाह से जुड़ा हुआ। हाँ, असल उनकी आजमाइश उस वक़्त हुई जब फिरौन डूबा, जब फिरौन डूबा और बनी इसराइल पे अच्छे दिन आ गए तो बिगड़ गए। लन्ना सबिर अला ताम वाहिद, हमसे रोज़ एक तरह का खाना नहीं खाया जाता। आज एग्जैक्टली इस पाकिस्तान में युफ्सिदुना फिल अर्द की एक बड़ी मिसाल हमारा इसराफ है, हमारा इसराफ है। इस पे कभी अलग बात करेंगे। करने का काम फिर क्या है, क्या करें? चले रिश्ते तो टूट गए, क्यों टूटे? नफसी नफसी। दूसरी बात, पहले रिश्तों में मिलावट और खुदगर्जी नहीं होती थी, लोग एक दूसरे की खुशी गमी को अपना समझते थे। आज रिश्ता वहाँ इंसान बनाता है जहाँ फ़ायदा हो, एहसास कम हो गया, और जहाँ एहसास मर जाते हैं तो रिश्ते टूटते और बिखरते हैं। एक और वजह, गलत फहमियाँ रिश्तों के अंदर बदगुमानियों के सांप भर देती हैं। आज बीवी को भी शौहर पे शक है कि ऑफिस में इतना तैयार होके क्यों जाते हैं, ये फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे? आज लोकेशन डिटेक्टर लगा लगा के बीवियों ने शौहरों की चोरियाँ पकड़ी हैं, उनकी डेटिंग पकड़ी है, उनकी दूसरी शादियाँ पकड़ी हैं, ये हो रहा है। वो कहते हैं ना कि ज़रा सा पर्दा हटा के तो देखो कितने जख्म है मेरे सीने में, और इसमें तो पूरी दुनिया इस वक्त एक हुई हुई है। सोशल मीडिया का इंतहाई नाजायज़ इस्तेमाल इस वक्त हमारे मुसलमानों में हो रहा है। जिनको सारी जिंदगी कोई तराश ना हो अपनी बीवी से, वो भी इस वक्त किसी और की मोहब्बत में चूर है। पहले तो फिजिकली जाकर डेटिंग करनी पड़ती थी, अब ये ई डेटिंग की बहुत है। याद रखिए कि इंसान गलती का पुतला है। हम गलती को नज़रअंदाज करने की बजाय अपने रिश्तेदारों से उकताने लगे हैं और हमारे रिश्ते टूट जाते हैं। फिर इसी तरह से आप देखिए कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, ये अबू दाऊद की रिवायत है 1693, जो शख्स ये चाहता हो कि उसकी उम्र और रिस्क में बरकत हो, चाहते हैं ना हम भी सब, कौन है जो उम्र नहीं लंबी चाहता और रिस्क नहीं चाहता, तो उसे क्या चाहिए कि वो सिला रहमी करे। और सिला रहमी आपने शुरू में जान लिया कि जो कटे उससे जुड़ो। ये क्या है कि आप मेरे घर आए तो मैंने आपको चाय के साथ दो चीज़ें खिला दी और मैं आपके घर गई तो आप पांच खिला दें, ये तो हम गैरों के साथ भी करते हैं। आज सिला रहमी का ये टॉपिक दिल में रख के जाइएगा, रूठों को मनाना सिला रहमी है, महरूम करने वालों को अता करना सिला रहमी है, आपके खिलाफ बातें करने वालों की तारीफें करना सिला रहमी है, बददुआएं देने वालों को दुआएं देना सिला रहमी है। वरना तो हज़ारों के केक हर ईद पे लोग अफसरों के घरों में वैसे भी बड़े भेजते हैं। आज जिस माशरे में हम कहने को मुसलमान माशरा है, लेकिन असल में सोच मगरिब की है, वेस्टर्न लाइफस्टाइल, वेस्टर्न सोच। आज इंसान और अल्लाह के और इंसान और कायनात के और इंसान के बीच के रिश्ते टूटने का दौर है। ना हम अल्लाह के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, रिवायती नमाज़ें पढ़ रहे हैं, नमाज में नहीं अल्लाह याद आता, बाहर कहाँ है। तवाफ़ के दौरान अल्लाह से ज़्यादा लोगों को सेल्फियाँ दिखाने का गम पड़ा होता है, अल्लाह का याद आना है। पहुँच गए उधर तो उधर मुंह करो, काबा को पीछे करके अपनी सेल्फी बना के लोगों को क्यों दिखाते हो, और फिर वाह वाह, फिर थोड़ी थोड़ी बार देखना कितनों ने लाइक, अपने स्टेटसों पर ये क्यों लगाते हो, ताल्लुक टूट जाता है। कायनात पे गौरी कोई नहीं, अब जाएँ घूमने फिरने, कहाँ जाना है, फलां होटल में चलते हैं। यानी मेरे हस्बैंड का एनालिसिस क्या है, पाकिस्तानी लोग सिर्फ एक चीज़ से खुश होते हैं और वो खाना है। खाना ले जाए उनके लिए, जिस मुल्क से गुजरे उधर से कोई खाना ले उस पे वो खुश होंगे, अब कपड़े जूतों पे कोई नहीं खुश होता, क्योंकि हर एक के पास वैरायटी पहले ही बड़ी है, और पहले तो कोई किसी की पसंद से पहन लेता था। आपने नहीं देखा रिश्ते टूटने में, इसको भी देखिए, एक शादी में जो गिफ्ट्स आते थे ना, सब कपड़े लाते थे, वो अगली बेटी का जहेज बन जाता था, और माँ वो अगली बेटी के लिए संदूकचे में रख देती थी, कभी बेटी ने सवाल नहीं किया था ये किस एल्बम का, ये अब तो पिछले साल का एल्बम बनेगा। वो एक बेटी की शादी का कपड़ों का एल्बम दूसरी बेटी के जहेज में खुलता था, वो साटन की शलवार होती थी, वो फ्लैट के फ्लैपर होते थे, वो बूली की कमीज़ होती थी, जो मर्जी होता था बन जाता था, और भाई बहन भी सोच से दे देते थे कि चलो काम है का। मशीनें इलेक्ट्रॉनिक्स तोहफों में आती है, किसी ने ग्राइंडर दे दिया है तो किसी ने ब्लेंडर, माँ ने उठा के रखने, पहली का लिया हुआ अगली का हो गया, बोलती थी वो बेटियाँ। आज करके तो देखे, माँ का लिया हुआ नहीं पहनती बेटियाँ, दूसरों का क्या पहनेंगी, माता परस्ती है। तो आज हमारे रिश्ते कमज़ोर हैं। आज भी आप किसी गरीब रिश्तेदार के घर में जाए ना, तो वो सारे हफ्ते का या महीने का गोश्त जो फ्रीज़र में बेचारे ने रखा है वो आपके लिए पकाने के लिए तैयार होगा, बाद में दाल खा लेंगे, चटनी खा लेंगे, उल्फत दिखेगी, और जिनके पास इतना होगा वो कहते छोड़ो कौन गंद डाले, इनको फारिग करो, चाय क्या बनानी है बोतल पिला दो, जूस मंगा के पिला दो, घर नहीं गंदा कर सकते, ये आज का दौर है। बल्कि आज सब कह सकते हैं कि रिश्तों का मामला तोड़ फोड़ से कहीं आगे जा चुका है, अब तो रिश्ते बदल रहे हैं, चाशनी ख़त्म हो गई, जैसे मीठा नमकीन हो जाए और नमकीन मीठा हो जाए। लेकिन याद रखिए, इट्स नॉट टू लेट, टूटे हुए रिश्तों को जोड़ना आसान है, बदले हुए रिश्तों को बहाल करना मुश्किल है। जब रिश्ता बदल जाता है ना, तो वो तो फिर आँखें ही फेर ली ना। आप अपने रिश्तों को जोड़िए, अल्लाह ने दुनिया में आपको क्या बना के भेजा है, इन्नी फाइलन फिलर दी खलीफा, खिलाफत का काम दिया है आपको, वलकत करम न बनी आदम और लकत खलक नल इंसान अफी अखसनी तकवीम, यानी अशरफुल मखलूक बनाया। अल्लाह ने इंसान के अंदर एहसास डाले, जज्बात डाले, अच्छे बुरे की तमीज़ डाली, दर्द दिल दिया, मोहब्बत करना सिखाया। और याद रखिए कि रिश्तों में मोहब्बत अल्लाह डालता है, किसी को उसके रिश्ते के मुताबिक प्यार मोहब्बत अहमियत अगर नहीं मिलता, वजह क्या है, एक तो यह कि वो टूट फूट का शिकार होकर एहसास कमतरी का शिकार हो जाता है, दूसरी बात है ये अल्लाह का रिस्क है। रिस्क सिर्फ दौलत नहीं है, माल नहीं है, मोहब्बतें भी रिस्क हैं। कुछ लोगों को ज़्यादा मोहब्बतें मिल जाती हैं, किसी को कम मिलती हैं। आप जब मोहब्बतों से बेनियाज हो गए, सिर्फ अल्लाह से अल्लुक पक्का करते जा रहे होते हैं और अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अपने शोहर और अपनी बीवी रिश्तेदारों का ख्याल रखे, अल्लाह प्यार डालेगा। हमारे यहाँ ये कि खूब मिलना, तोहफे देना लेना, वो मोहब्बत नहीं होती, मोहब्बत अल्लाह डालता है। हमारे रवैये हैं, जो किसी दूर वाले को करीब कर देगा, और हमारे रवैये ही हैं जो हमारे करीबियों को हमसे दूर कर देते हैं। एक घर में रहने वालों को नहीं पता किधर है, और नेट पे आपको ये पता है कि आपकी दोस्त इस वक्त नियाग्रा फॉल में घूम रही है क्योंकि उसने स्टेटस पे लगा दिया। घर में रहते बच्चों को बाज लोग इधर से पकड़ते हैं कि इधर तो आवे, नीचे आ, तुझे कितनी देर से बुला रहा हूँ। और जिस भी ठहरते नहीं है ये मूविंग होते हैं। अपने रिश्तों को मोहब्बत दीजिए। अब आपसे मैंने आज बात छेड़ी है तो मैं इसका आपको खौल भी दूँ, अगर अल्लाह ने आपको दीन दे दिया, खुदा के लिए लोगों का जीना धोबर ना करें। आप अपने शौहर की उस्तानी जी नहीं बन सकती, आपके बच्चों को माँ चाहिए, उस्ताद नहीं चाहिए। आपकी कोई उस्ताजा होंगी, आपके बच्चों को आपकी मोहब्बत चाहिए, तो फिर चेंज कैसे आएगा? फिर सवाल आप कहते हैं फिर ये तो बिगड़े हुए बहुत हैं। केयर, मोहब्बत, प्यार, कुर्ब दीजिए उनको, लम्स दीजिए। बेटों के बालों में उंगलियां फेरें। हम बचपन में बच्चे को गुदगुदा के रुला देते हैं, और बड़े होते बच्चे जिनको आपसे कुछ, और ख़ास तौर पर ये जो टीन एज गुजरती है ना, 17, 18, 14, 15, बच्चों को फिजिकल लम्स चाहिए होता है। बेटियों से खो तो हमें एक आंख नहीं अच्छी लगती वो, क्योंकि उनकी वजह से लोगों को पता चल जाता है हमारी उम्र के। अब 18 साल की बेटी अगर हो जाए 17 की, तो आप 20 की तो नहीं रही ना। मैंने अक्सर देखा है जिनकी बेटियाँ जवान होती हैं ना, तो माँ उन्हें कहती पीछे होके खड़े होना। एक माँ ने तो फिजिकली लाड से कहा मेरे साथ ना जुड़ना शादी में, क्योंकि लोगों ने उनको कहना है आप तो अभी भी जवान हैं, भाई आपकी बेटी है, फिर 10 जगह ये बात सुनाएंगी। एक थी बेचारी, उसको किसी ने मियाँ के साथ देख लिया, मियाँ बेचारों ने दाढ़ी को नहीं डाई किया था, औरतें डाई कर लेती हैं, तो ये आपके ससुर हैं। उसने भी हर एक को ये जुमला सुनाया, और मियाँ गरीब की मत मार दी कि आप तो मेरे ससुर लगते हैं। कितना अच्छा लगता है बंदे को। कुर्ब, मोहब्बत फातिहे आलम, जो दिलों को जीत ले वही फातिहे ज़मान। रो दें, जज्बों से लाइए अपने बच्चों को, शौहर को, मैं सबको छोड़ के सिर्फ घर के बच्चे, शौहर और सास, क्योंकि ये लाजमी इंग्रेडिएंट्स हैं हमारे कल्चर का। सास के बगैर भी हमारे घर का माहौल पूरा नहीं होता, और अक्सर आंसू या शौहर के किसी कहने पर निकलते हैं या सास की किसी बात से। इन सब को आप अपने जज्बात के साथ दीन सिखाएंगी, प्यार से, मोहब्बत से, उनको मिस करें, उनको प्यार करें। जिस चीज़ ने आपका दिल बदला वो उनका बदलेगा। आप अपने बच्चे को कहते हैं ना ये ना करो वो ना करो, तो ये ऐसी मिसाल है जैसे आपके नेबर में एक आपकी बहुत एक अच्छी दोस्त है और उसकी मेड है मासी। वो मासी किसके कहने पे झाड़ू देगी, किसके कहने पे बर्तन धोएगी? अपनी मालकन के ना। आप किसी की मासी को अपने घर बुला के कहें ना बर्तन धो दो, तो कही मेरे पास टाइम नहीं है, मैं ये आपको बस दाल चावल देने आई थी, मैं जा रही हूँ। किसी का नौकर दूसरे की बात नहीं मानता, सीधी सी बात, इला ये कि उम्मीद हो कि इधर से भी कुछ मिलना। आपके बच्चे अपने दिल के गुलाम हैं, आपकी बेटियां अपने दिल की गुलाम हैं। आपने अपने बेटे बेटी को दीन की को बात कहनी है ना, तो उनके दिल पे काम कीजिए। उनका दिल कहेगा ना पर्दा करो वो करेंगी, उनका दिल कहेगा ना दाढ़ी रखो वो रखेंगे। आपका बींगा मदर और बींगा वाइफ और हर इंसान काम सिर्फ ये कि उनके दिल को बदलने का रास्ता लाइए, और वो आपके तानों मेहनों से नहीं बदलना। और ये क्या बात है कि आप खुद तो हर जगह पहुँच जाए और आपके बच्चे ही ना हो। माँ भी कहती है वो मेहंदी है ना, तुम चली जाना, हम बूढ़ों का वहाँ क्या काम। हमारी बच्चियाँ स्कूल और कॉलेजेस में घंटों गुजारती हैं, और मैंने अपने इस 1 महीना 2 दिन के ट्रिप में कई कॉलेज और यूनिवर्सिटी तो एक ही, लेकिन कॉलेजेस और स्कूलों में कई मैं विज़िट किया। मैं हैरान हो जाती हूँ कि ये हमारे पाकिस्तान मुसलमान मुल्क के लोग हैं, 8-8 घंटे की क्लास और हफ्ते के 5 दिन, 8, 5, 40 फुल टाइम, 40 घंटे। आपकी बच्ची जिस माहौल को अपनी आंखों से देख आती है, वो घर आके आपके एक नारा मारने से तो नहीं बुरा हो जाना। लड़कियां लड़कों की गोदों में सर रख के बैठी हुई हैं, जाके देखिए कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ की बाहर ओपन प्लेसेस को, कोई शर्म नहीं, कोई हया नहीं। कैंटीन वहाँ ऐसे लगता है जैसे हम कभी ड्रामे देखते होंगे ना, तो उस वक्त जो ड्रामों में माहौल दिखाते थे ना स्कूलों कॉलेजों का, वो आपके रेगुलर में बना हुआ है। तो वो आपके इस नारे से कि आपने दर सुना जाकर आपने एक नारा मारना है, थोड़ी देर बाद ठीक भी हो जाना है, आपने वो गुब्बार निकाला, चलो रोटी पका दूँ, क्या खाना है, तो उन्हें टुप टुप करके कमरे में चले जाना, अम्मी आपको तो बस एक ही काम है। वल्ला ही इस तरह बच्चे और बिगड़ेंगे, बिदकेंगे, आपकी बहुएं आपसे नफरत करेंगी, अगर आप दिन रात कुरान 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 लेते देते और उनको नहीं लाएंगे। अब उनको लाना कैसे, ये आप सबको आता है। अपना हक लीजिए अच्छे तरीके से। आप अपने घर में बहू लाए ही वो जिसको इससे मोहब्बत हो, आप कहते नहीं ठीक हो जाएगी, तो होती है फिर ठीक, ये ठीक कर लेगी। हुसन दिखा, लड़की पसंद आ गई, दौलत दिखी, लड़की पसंद आ गई, और गाड़ी दिखी, लैंड क्रूजर दिखी, तो लड़का पसंद आ गया। जब बुनियाद गलत है, आज यानी मैं अपने लास्ट सेंटेंसेस ये बोल देती हूँ, रिश्तों की बुनियादें ठीक कीजिए। बेटे और बेटी का रिश्ता जो ले दे रहे हैं ना, तो पहले चेक कीजिए वो 4 चीज़ें हैं, ली माली हा, ली हसबी हा, ली जमाली हा, ली दीनी हा। या दौलत के लिए लोग रिश्ते करते हैं, या हसब नसब के लिए करते हैं, या खूबसूरती के लिए लगते हैं, या दीन के लिए करते हैं। इतने से सवाल कीजिए, मैं अपने बेटे के लिए जब दुल्हन ढूंढने जाती हूँ तो मेरा मेयार क्या होता है? यूनिवर्सिटी से गुजर रहे थे हम, मेरे साथ और भी साथी थे, वो हमें दिखा रहे थे, टूर दे रहे थे, इतनी लड़के इतने लड़के। तो मैंने कहा कि ये जो पढ़ने आते हैं इनके तो रिश्ते इधर ही सेट हो जाते होंगे, कितनी खुद कफील हैं लड़कियां, लड़कों को देखें, उस माँ बाप से कह दें शादी कर दें, फिर क्यों कहते हैं कि पाकिस्तान में रिश्तों का मसला है? तो जो मेरे साथ थी ना, उधर टीचर थी, तो मुझे कहने लगी ये जितने इकट्ठे फिर फूर रहे हैं ना, ये कभी भी इन लड़कियों से शादी नहीं करेंगे, शादी इनको फिर किसी अच्छी महजब लड़की से या मीन के ज़रा डिस्टेंस से करने वाली, और लड़कियाँ इन लड़कों से कोई नहीं शादी करती। कहती बड़े ही मसले हैं। मैं खुश हो रही थी कि माँ बाप का काम ख़त्म हो गया, जब आपने को एजुकेशन में लड़की लड़का डाल जो दिया, तो एक और इजाज़त दे दीजिए कि बेटी जो पसंद आया हमें बता देना, या उसको कहना अपनी माँ को भेज दे, और बेटा अगर तुम्हें कोई लड़की पसंद आती है ना तो ज़रा कह देना, मैं चली जाऊँगी उधर। तो वो तो कहते कहानी कोई नहीं है, इनके लिए ऐसी है जैसे कॉलेज गर्ल्स कॉलेज फ्रेंड्स हैं, ये एज अ फ्रेंड से एक लेते हैं, शादी तो नहीं करते एक दूसरे से। तो मेरा दिल बुझ गया, मैंने कहा अब इन सब के रिश्ते ढूंढने पड़ेंगे माओं को और बापों को, यानी आग और पानी को इकट्ठा रखेंगे तो धुआं तो निकलेगा, मोहब्बत चल सकती, कहती ताल्लुक चल जाता है, चाय पी सकते हैं, इकट्ठे रह सकते हैं, फ्रेंडशिप है वो है, लेकिन शादी के लिए फिर माँ बाप को वही जूते ही रगड़ने पड़ेंगे। तो मेयार ठीक कीजिए। और अक्सर ये जुमला मुँह से निकल जाता है कि रिश्तों के इंतखाब के वक्त हमारा असल दीन खुलता है, हाउ मच रिलीजियस वी आर। एक बाप की नज़र में दीन कितना अहम है, वो जब बेटी के लिए लड़का ढूंढ रहा है तो उस वक्त दिखेगा, और बेटी के लिए लड़की देखेगी माँ तो पता चलेगा। हम कॉम्प्रोमाइजिंग सबसे ज़्यादा रिश्तों पे होते हैं, क्योंकि राल टपक जाती है घर देख के, नहीं ठीक हो जाएगी, नहीं नहीं मेरी बेटी इसको ठीक कर लेगी, इस लड़के को होती है, आंसुओं से वो रोती हैं बच्चियाँ। तो लिहाजा रिश्तों को मजबूत करना है तो मोहब्बत उल्फत के साथ जिम्मेदारियों का हकूक, और उनको अल्लाह से जोड़िए, वरना आप याद रखिए घर बेसुकूनी और टूट फूट का शिकार है, होते हैं और हो रहे हैं। फिर एक बहुत बड़ी चीज़ जिससे आप रिश्ते को बचा सकती हैं ना, जिसकी वजह से रिश्ते टूटते हैं और आपने जोड़ने, अना। छोटी छोटी बातों को अना का मसला बनाने वालों के रिश्ते टूट नहीं जाते, दरारें पड़ जाती हैं और बाद में फिर दिल फट जाते हैं। और होती छोटी सी बात है, हमारी इज्जत नहीं की, हमें अच्छी कुर्सी पे नहीं बिठाया, और हमारी बेइज्जती कर दी, और सारा भुगतना पड़ता है बाद में लड़की लड़के को। तो आपके रिश्ते इज्जत और तवज्जो चाहते हैं, इज्जत दीजिए, तवज्जो दीजिए, छोटी छोटी बातों को ना का मसला ना बनाइए, हो गई मिट्टी पाओ फिर क्या है? जो बात की उसका खुलासा, एक दौर था कि रिश्तों को बचाना इंसान का बड़ा गोल होता था, इंसान की सारी एक्टिविटीज़ डे टू डे स्केजुअल सरगर्मियाँ इसका मरकज़ रिश्ते होते थे। आज इंसान की जिद्दोजहद का मकसद तब्दील हो गया, और वो क्या बन गया? पैसा, नफसी, स्टेटस, पढ़ाई, बच्चियों की स्टडीज़। आज इंसान मुआशी ज़िंदगी और मुआशियात के गिर्द घूम रहा है, और जितनी ये सनत तरक्की करती जा रही है, खुशियों के मेयार बदलते जा रहे हैं। पहले जो खुशी किसी खूनी रिश्ते को मिलने से आपको मिलती थी, अब उनकी तरफ से कोई मिलने वाले अच्छे गिफ्ट्स की सूरत में आपको मिल सकती है, या उनकी किसी बड़ी गाड़ी की सूरत में मिलती है। और एक छोटी सी बात कि आज के इंसान की साइकोलॉजिकल नीड्स बदल रही हैं, नफसियाती, जज्बाती और हिस्सी चीज़ों को आप बहुत तेज़ी से बदलता देख रहे हैं। वो खुशी जो करीब में थी वो अब दूर से लेनी पड़ती है। पब्लिक रिलेशन के नाम पे पीआर बड़ा मशहूर एक दायरा है, अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि हमारा सारा पीआर जो अपनी फैमिली के साथ अच्छा हो जाए। मैंने कभी अपने से पढ़ने वालों को ये नहीं कहा कि घरों में लड़ाइयाँ करो, झगड़े करो। एक वक्त था कि कहते थे कि जिसकी गवाही उसके घर खानदान वाले दे देना, उधर रिश्ता कर दो, अकाउंट था वो आपका। आज इंसान का अकाउंट उसके डॉलर पाउंड और रुपए हैं, और खोटे ने खरे की और खरे ने खोटे की जगह ले ली है। छोटी छोटी बातें बड़े बड़े रिश्तों को ख़त्म कर देती हैं। अल्लाह से रिश्ता जोड़ेंगे तो टूटे हुए रिश्ते सारे जुड़ जाएंगे। सुभान रब्बी का रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून, वसलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाह खैर।